संक्षिप्त पद्म पुराण सृष्टिखंड पार्वती का तप तथा उनका शिव जी के साथ विवाह। उधर नारद के कथा अनुसार हिमवान अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर उसकी दो सखियों के साथ भगवान के शंकर के समीप ले जा रहे थे। मार्ग में रति के मुख से मदन दहन का समाचार सुनकर उनके मन में कुछ भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने कन्याओं को लेकर अपनी पुरी में लौटने का विचार किया। यह देखकर पार्वती ने अपनी सखियों के मुख से पिताजी को कहलाया, तपस्या से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में तपस्या जैसे साधन रहते लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्य का भार ढोते हैं। अतः अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से मैं तपस्या करूँगी। यह सुनकर हिमवान ने कहा, हे बेटी, माँ ऐसा न करो। तुम अभी चपल बालिका हो, तुम्हारा शरीर तपस्या का कष्ट सहन करने में समर्थ नहीं है। हे बाले, जो बात होने वाली होती है वह होकर रहती है, इसलिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब घर को ही चलूँगा और वहीं पर इस कार्य की सिद्धि के लिए अन्य उपाय को सोचूँगा। पिता के ऐसा कहने पर भी जब पार्वती घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तब हिमवान ने मन ही मन में अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की। इसी समय आकाश में दिव्यवाणी प्रकट हुई, जो तीनों लोकों में सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार थी, हे गिरिराज, तुमने ऊ माँ कहकर अपनी पुत्री को तपस्या करने से रोका है, इसलिए संसार में उसका नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अपनी अभिलषित वस्तु को वह अवश्य प्राप्त करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान ने पुत्री को तप करने के लिए आज्ञा दी और स्वयं अपने भवन को चले गए। पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ हिमालय के उस प्रदेश में गई जहाँ देवताओं का भी पहुँचना कठिन था। वहाँ का शिखर परम पवित्र और नाना प्रकार की धातुओं से विभूषित था। सब और दिव्य पुष्प और लताएं फैली हुई थीं, वृक्षों पर भ्रमर गुंजन कर रहे थे। वहां पार्वती ने अपने वस्त्र और आभूषण को उतारकर दिव्य वल्कल को धारण किया। कटी में कशुओं की माँ मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करती और गुलाब के फूल चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने 100 वर्ष तक तपस्या की। तत्पश्चात 100 वर्षों तक हिमवान कुमारी ने प्रतिदिन 1 पत्ता खाकर तपस्या की। तदंतर पुनः 100 वर्षों तक उसने आहार का सर्वथा परित्याग कर दिया। इस तरह की तपस्या से वह निधि बन गई। उसकी तप की आंच से समस्त प्राणी उद्विग्न हो गए। तब इंद्र ने सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ एक ही समय वहां पर उपस्थित हुए। इंद्र ने उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उन्होंने अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब इंद्र ने कहा, हे महात्माएं, आप लोगों का आह्वान प्रयोजन सुनिए। हिमालय पर पार्वती देवी घोर तपस्या कर रही है। आप लोग संसार के हित के लिए शीघ्रतापूर्वक वहां जाकर अभिमत वस्तु की प्राप्ति का विश्वास दिला तपस्या को बंद करा दीजिए। बहुत अच्छा कहकर सप्तर्षिगण उस सिद्धि सेवित शैल पर आ पहुँचे जहाँ पार्वती देवी थी और उनसे मधुर वाणी में वह बोले, हे बेटी, तुम उस उद्देश्य की से यहाँ पर तप कर रही हो। पार्वती देवी ने मुनियों को गौरव ध्यान रख कर आदरपूर्वक कहा, हे महात्मा, आप लोग समस्त प्राणियों के मनोरथ जानते हो। प्रायः सभी देहधारी ऐसी ही वस्तु की अभिलाषा करते हैं जो अत्यंत दुर्लभ होती है। मैं भगवान शंकर को प्रतिरूपति के रूप में प्राप्त करने का उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभाव से ही दुराध्य हैं। देवता और असुर भी जिनके स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, जो परमार्थिक क्रियाओं का एकमात्र आधार है, जिन वीतराग महात्मा ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, ऐसे महामहिम शिव को मेरी जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार आराधना द्वारा प्रसन्न कर सकती है। पार्वती के यों कहने पर मुनियों ने अब उसकी मन की दृढ़ता जानने के लिए कहा, हे बेटी, संसार में दो तरह का सुख देखा जाता है। एक तो वह होता है जिसका शरीर के साथ संबंध होता है, और दूसरा वह जो मन को शांति व आनंद प्रदान करने वाला होता है। तुम यदि अपनी शरीर के लिए नित्य सुख की इच्छा करती हो, तो तुम्हें ध्रुणित वेश में रहने वाले भूत प्रेतों के संगी महादेव से यह सुख कैसे मिल सकता है? अरे, वे फुत्कारते हुए भयंकर भुजंगों के आभूषण के रूप को धारण करते हैं, स्मशान की भूमि में रहते हैं, और रौद्र रूप धारण प्रथम गण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु ही अच्छे, वे जगत के पालक हैं। उनके स्वरूप कई और छोर कोई नहीं है, तथा वे यज्ञभोगी देवताओं के स्वामी हैं। तुम उन्हें पाने की इच्छा क्यों नहीं करती? अथवा दूसरे किसी देवता को पाने से आपके मानसिक सुख को प्राप्ति होगी। जिस वर को तुम चाहती हो उसको पाने में बहुत ही क्लेश है। यदि कदाचित प्राप्त भी हो गया तो वह निष्फल वृक्ष के समान है, उससे तुम्हें कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। उन श्रेष्ठ मुनियों के ऐसा कहने पर पार्वती देवी कुपित हो गई और उन्होंने ओठ फफड़ने लगे और क्रोध से लाल आँख करके वो बोली, हे महर्षियों, दुराग्रही के लिए कौन सी नीति है जिसकी समझ उल्टी है? उन्हें आज तक किसने राह पर लगाया है? मुझे भी ऐसी ही जानिए। अतः मेरे विषय में अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापति के समान हैं, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं। फिर भी यह निश्चय है कि आप उन जगत प्रभु सनातन देव भगवान शंकर को नहीं जानते। वे अजन्मा ईश्वर और अव्यक्त है। उनकी महिमा का माप या तोल नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों का उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूप का बोध भी आवृत है। श्री विष्णु तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। ब्रह्मर्षियों, उनका आत्मवैभव समस्त भुवनों में फैला हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के सामने प्रकट है। क्या उससे भी आप लोग नहीं जानते? बताइए तो, यह आकाश किसका स्वरूप है? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति रूप है? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं? और चंद्र और सूर्य किसके नेत्र हैं? पार्वती देवी की यह बात सुनकर सप्तर्षिगण वहाँ से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर शिवजी विराजमान थे। उन्होंने भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवान से कहा, स्वर्ग के अधीश्वर हे महादेव, आप दयालु हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री आपके लिए तपस्या कर रही है। हम लोग उसका मनोरथ जान के आपके पास आए हैं। आप योग माया महिमा और गुणों के आश्रय हैं। आपको अपने निर्मल ऐश्वर्य पर गर्व नहीं है। शरीरधारियों के में हम लोग अधिक पुण्यवान हैं जो कि महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं। ऋषियों के रमणीय एवं हितपूर्वक वचन सुनकर वागीश्वरों में श्रेष्ठ वैसे भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवरों, मैं जानता हूँ लोक रक्षा की दृष्टि से वास्तव में यह कार्य बड़ा ही उत्तम है, किंतु इस विषय में मुझे हिमवान पर्वत की आशंका है। शायद वे मेरे साथ अपनी कन्या के विवाह की बात का स्वीकार न करें। इसमें संदेह नहीं है कि आप लोग कार्य सिद्धि के लिए उद्वत हुए हो। ये सभी उत्कंठित रहा करते हैं। उत्कंठा होने पर भी बड़े बड़े महात्मा के चित्त भी उतावली पड़ जाते हैं। तथापि विशिष्ट व्यक्तियों को लोक मर्यादा का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि उससे ही धर्म की वृद्धि होती है और परिवर्तित लोगों के लिए आदर्श उपस्थित होता है। भगवान के ऐसा कहने पर सप्तर्षिगण हिमालय के भवन में गए। वहाँ हिमवान बड़े ही आदरपूर्वक उनका पूजन और सत्कार किया। उससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ उतावलोक के कारण संक्षेप से बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के लिए साक्षात पिनाकधारी भगवान शंकर तुमसे याचना करते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री भगवान श्री शंकर को समर्पित करके अपने को पावन बनाओ। यह देवताओं का कार्य है। जगत का उद्धार करने के लिए यह उद्योग किया जा रहा है। उनके ऐसा कहने पर हिमवान बहुत ही आनंद विभोर हो गए। तब वे हिमवान को लेकर पार्वती के आश्रम पर पहुँचे। उमा तपस्या के कारण तेजोमय दिखाई दे रही थी। उसने अपने तेज से सूर्य और अग्नि की ज्वाला को भी परास्त कर दिया था। मुनियों ने जब स्नेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा, तब मानिनी ने यह सार गर्भित वचन कहा, मैं पिनाकधारी भगवान रुद्र के सिवा दूसरे किसी और को नहीं जानती। वे ही छोटे बड़े सर्व प्राणियों में आत्मरूप से स्थित है। वे ही सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण में उन्होंने शोभा देते हैं। वे तुलना रहित महान प्रमाण हैं। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। जिनका ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है, उन्हीं भगवान की शंकर की शरण में मैं आई हूँ। पार्वती देवी का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए और उन्होंने तपस्विनी गिरिजा की प्रशंसा करते हुए मधुर वाणी में कहा, ओहो बड़ी अद्भुत बात है बेटी, तुम निर्मल ज्ञान की मूर्ति सी जान पड़ती हो और श्री शंकर जी के दृढ़ अनुराग रखने के कारण अंतकरण को अत्यंत प्रसन्न कर रही हो। हम भगवान शिव की अद्भुत ऐश्वर्य को जानते हैं, केवल तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे। अब तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अपने इस मनोहर रूप को तपस्या की आग में न जलाओ। कल प्रातः काल में भगवान शंकर स्वयं यहाँ आकर तुम्हारा पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे। हम लोग पहले आकर तुम्हारे पिताजी से यह प्रार्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिताजी के साथ उनके घर जाओ और हम भी अपने आश्रम को जाते हैं। उसके इस प्रकार कहने पर पार्वती यह सोचकर कि तपस्या का यथार्थ फल प्राप्त हो गया है, तुरंत ही पिता के शोभ संपन्न दिव्य भवन में चली गई। वहां जाने पर गिरिजा के हृदय में भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। अतः उसे वह रात 1000 वर्षों के समान जान पड़ी। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सखियों के साथ पार्वती का मांगलिक कार्य करना आरंभ हुआ। क्रमशः नाना प्रकार के मंगल विधान यथार्थ पूर्वक संपन्न हुए। सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली ऋतुएं मूर्तिमान होकर गिरिराज हिमालय की उपासना में लग गई। सुखदायिनी वायु झाड़ने बुहाड़ने के काम में लगी थी। चिंतामणि आदि रत्न, तरह तरह की लताएं और कल्पतरु आदि बड़े बड़े वृक्ष भी वहां पर उपस्थित थे। दिव्य औषधियों के साथ साधारण औषधियाँ भी दिव्य देह धारण करके सेवा में संलग्न थी। रस और धातुओं भी वहाँ दास दासी का काम करते थे। नदियाँ समुद्र स्थावर तथा जंगम सभी प्राणी मूर्तिमान होकर हिमवान की महिमा बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर निर्मल शरीर वाले देवता मुनि नाग यक्ष गंधर्व तथा किन्नरगण श्री शंकर जी के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाए गंधमादन पर्वत पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने श्री शंकर जी के जटाजूट से में चंद्रमा की कला सजाई। भगवान श्री विष्णु ने रत्न से बने कर्णभूषण उज्ज्वल कंठहार और भुजंगमय आभूषण लेकर श्री शंकर जी के सामने उपस्थित हुए। अन्य देवताओं ने मन के समान वेग वाले शिव वाहन नंदी को भी विभूषित किया। भांति भांति के श्रृंगार सामग्री से श्री शंकर जी को सुसज्जित करके वह उनके सुंदर आभूषण पहना कर देवताओं की व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई थी। वे शीघ्र वैवाहिक कार्य को संपन्न करना चाहते थे। पृथ्वी देवी भी सर्वथा व्यग्र हो गई थी। वे मनोरूप धारण करके उपस्थित हुई तथा नूतन तथा सुंदर रस और औषधियाँ प्रदान करने लगी। साक्षात वरुण रत्न और आभूषण तथा भांति भांति के रत्नों से बने विचित्र विचित्र पुष्प लेकर उत्पन्न हुए। समस्त देहधारियों के भीतर रहकर सब कुछ जानने वाले अग्निदेव भी परम पवित्र सोने के दिव्य आभूषण से को लेकर विनित भाव से सामने आए। वायु सुगंध बिखरती हुई मंद मंद गति से प्रवाह करने लगी, जिसका स्पर्श भगवान शंकर को सुखद प्रतीत हो रहा था। वज्र से सुसज्जित देवराज इंद्र बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भगवान शिव का छत्र ग्रहण करके उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वह छत्र अपने उज्ज्वल प्रकाश से चंद्रमा की किरण वालियों का उपहास कर रहा था। गंधर्व और किन्नर अत्यंत मधुर बाजों की ध्वनि में गान करने लगे थे। मुहूर्त और ऋतुएं मूर्तिमान होकर गान और नृत्य करने लगी। भगवान शंकर हिमवान के नगर में पहुँचे और उनके चंचल प्रथम गण हिमालय का आलोहन करते हुए वहाँ स्थित हुए। तत्पश्चात विश्वविधाता ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर क्रमशः विवाह मंडप में विराजमान हुए। शिव ने अपनी पत्नी उमा के साथ शास्त्रोक्त रीति से वैवाहिक कार्य संपन्न किया। गिरिराज ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं ने विनोद के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। शिव ने पत्नी के साथ वह रात्रि वहीं व्यतीत की। सवेरे देवताओं के स्तवन करने पर वह उठे और गिरिराज से विदा लेकर वायु के समान वेग वाले नंदी पर सवार होकर पत्नी सहित मंदराचल को चले गए। उमा के साथ भगवान नील लोहित के चले जाने पर हिमवान का मन कुछ उदास हो गया। क्यों न, कन्या की विदाई हो जाने पर भला किस पिता का हृदय व्याकुल नहीं होता।